ज्ञान गोष्ठी में स्वागत। आज हम 20वीं सदी के एक अहम ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लैंगशॉ ऑस्टिन यानी J.L. ऑस्टिन पर बात करने वाले हैं।
हाँ, J.L. ऑस्टिन।
उनके विचार देखिए इस बारे में हमारी समझ को बिल्कुल बदल देते हैं कि भाषा असल में क्या करती है ना?
बिल्कुल। ऑस्टिन वो 1911 से 1960 तक रहे। ऑक्सफोर्ड के एक ऐसे विचारक थे जिनका जीवन भले ही सिर्फ 48 साल का रहा हो, लेकिन भाषा के दर्शन पर उनकी छाप बहुत गहरी है।
हाँ,
उन्होंने ये तर्क दिया कि भाई, जब हम बोलते हैं तो हम सिर्फ दुनिया का वर्णन नहीं कर रहे होते,
अच्छा,
बल्कि हम असल में कुछ कर रहे होते हैं। एक्शन।
यही यही तो उनका केंद्रीय विचार है ना, शब्द कर्म है। सुनने में ये बहुत सहज लगता है, पर इसके मायने काफी गहरे हैं, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं।
हाँ, सही कहा। ये विचार कि भाषा सिर्फ सूचना देने का माध्यम नहीं, बल्कि मतलब क्रिया करने का जरिया भी है, इसने भाषा विज्ञान से लेकर कानून और यहां तक कि AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इन सब क्षेत्रों को प्रभावित किया है।
तो आज हम इसी विचार की परतें खोलेंगे।
जी,
तो फिर उस दौर से शुरू करते हैं जहां ये विचार पनप रहे थे। 20वीं सदी का मध्य था, दूसरा विश्व युद्ध अभी खत्म ही हुआ था। बौद्धिक माहौल कैसा था उस वक्त ब्रिटेन में?
देखिए, वो दार्शनिक रूप से काफी उथल पुथल का समय था। एक तरफ तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म, मतलब तार्किक प्रत्यक्षवाद, उसका बोलबाला था।
हाँ, AJR जैसे लोग।
बिल्कुल, AJR जैसे विचारक। उनका मानना था कि कोई कथन तभी सार्थक है जब या तो उसे अनुभव से जांचा जा सके, जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलते हैं।
या फिर वो परिभाषा से ही सच हो, जैसे सारे कुंवारे अविवाहित हैं।
हाँ बिल्कुल, या वो परिभाषा से ही सच हो।
तो इसका मतलब ये हुआ कि नैतिकता, सौंदर्य या ईश्वर जैसी बातें उनके लिए बेमानी थी, क्योंकि उन्हें जांचा नहीं जा सकता।
मोटे तौर पर हाँ, उनके फ्रेमवर्क में ये अर्थहीन कथन थे। लेकिन इसी के खिलाफ ऑक्सफोर्ड में एक रिएक्शन हुआ।
अच्छा,
एक प्रतिक्रिया जन्मी ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलॉसफी, यानी सामान्य भाषा दर्शन, और J.L. ऑस्टिन इसके सबसे बड़े अगुवा बने।
और जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ एक अकादमिक बहस नहीं थी, है ना? ये तो वाकई दर्शन करने के तरीके को बदलने की एक कोशिश थी। इनका मुख्य तर्क क्या था फिर?
इनका मानना था कि देखिए, जो बड़ी बड़ी दार्शनिक समस्याएं हैं वो अक्सर इसलिए खड़ी हो जाती हैं क्योंकि हम रोजमर्रा की भाषा के इस्तेमाल को या तो नजरअंदाज कर देते हैं या उसे गलत समझ लेते हैं।
हाँ,
अगर हम ध्यान से देखें कि भाई, सामान्य लोग शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं, तो कई दार्शनिक गुत्थियां अपने आप सुलझ सकती हैं।
अच्छा,
गिल्बर्ट रायल, P.F. स्ट्रॉसन जैसे विचारक भी इसी धारा से जुड़े थे। यहां तक कि लुडविग विटगेंस्टाइन के बाद के विचारों में भी ऐसी ही झलक मिलती है। भाषा को नियमों और सामाजिक व्यवहारों का एक, क्या कहते हैं, एक जटिल ताना बाना समझना।
आपने दूसरे विश्व युद्ध का जिक्र किया, क्या उसका ऑस्टिन के जीवन और उनकी सोच पर कोई सीधा असर पड़ा था?
हाँ, और शायद बहुत निर्णायक असर पड़ा। ऑस्टिन ने विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6, उसमें काम किया था।
ओहो,
उनका काम भाषा के बेहद सटीक और सूक्ष्म विश्लेषण पर टिका था। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि आइजनहावर के खुफिया प्रमुख ने कहा था कि D-Day लैंडिंग से जुड़ी खुफिया जानकारी की सटीकता का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को देना हो तो वो ऑस्टिन है।
अरे वाह, ये तो वाकई असाधारण बात है। तो क्या इस अनुभव ने उनके दार्शनिक विचारों को मतलब आकार दिया होगा?
पूरी संभावना है। देखिए, जब शब्दों के सही या गलत इस्तेमाल का नतीजा जीवन और मृत्यु हो सकता है, तो आप भाषा को सिर्फ अमूर्त विचारों का खेल नहीं समझ सकते।
सही बात है।
आप समझने लगते हैं कि शब्दों में कितना वजन होता है, उनसे क्या क्या किया जा सकता है। इसने शायद भाषा के व्यवहारिक, क्रिया उन्मुख पहलू पर उनके जोर को और मजबूती दी होगी।
युद्ध के बाद वे वापस ऑक्सफोर्ड आ गए। उनका अकादमिक सफर कैसा रहा फिर?
वे ऑक्सफोर्ड के मैगडलिन कॉलेज में फेलो बने और फिर 1952 में नैतिक दर्शन के प्रतिष्ठित वाइट्स प्रोफेसर बने,
हाँ
और वो ऑक्सफोर्ड में सामान्य भाषा दर्शन की केंद्र बन गए।
हाँ
उनकी सैटरडे मॉर्निंग्स नाम की साप्ताहिक बैठकें बहुत मशहूर थी।
हाँ मैंने भी पढ़ा है इन बैठकों के बारे में, जहाँ वे सहयोगियों और छात्रों के साथ मिलकर भाषा की बारीकियों का पोस्टमार्टम करते थे। कहा जाता है कि वे किसी एक शब्द पर घंटों बहस कर सकते थे।
बिल्कुल, उनका तरीका ही यही था। बहुत सावधानी से परत दर परत विश्लेषण। वे कोई भव्य सिद्धांत बनाने की बजाय ये देखते थे कि हम असल में भाषा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक मशहूर किस्सा है कि उन्होंने एक बार जानबूझकर, डेलिबरेटली, इस शब्द का विश्लेषण करने में पूरा सेमेस्टर लगा दिया था।
पूरा सेमेस्टर एक शब्द पर, कमाल है। ये उनकी सूक्ष्मता और धैर्य को दिखाता है, और उनके काम करने के तरीके, उनकी पद्धति पर भी रोशनी डालता है।
हाँ, उनकी पद्धति सामान्य भाषा को ज्ञान का एक तरह का खजाना मानती थी। वो कहते थे कि हमारी रोजमर्रा की भाषा में पीढ़ियों के अनुभव से जो बारीकियां और भेद विकसित हुए हैं वो अक्सर किसी दार्शनिक के बनाए सिस्टम से ज्यादा गहरे और ठोस होते हैं। इसलिए वे एक्स क्या है ये पूछने के बजाय पूछते थे हम कब कहते हैं कि।
ये दिलचस्प है कि इतने प्रभावशाली होने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कम लिखा। हमारे स्रोत बताते हैं सिर्फ 7 शोध पत्र।
हाँ, वो एक तरह से अनिच्छुक प्रकाशक थे। उन्हें विचारों पर जीवंत बहस करना ज्यादा पसंद था बजाय इसके कि उन्हें छपे हुए शब्दों की अंतिम स्थिरता में बांध दिया जाए। उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताबें जैसे हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स, सेंस इन सेंसिबिलिया और फिलोसॉफिकल पेपर्स, ये सब उनकी मृत्यु के बाद उनके बहुत ध्यान से तैयार किए गए लेक्चर नोट्स और पत्रों से संकलित की गईं।
और उनका निधन भी काफी जल्दी हो गया था।
हाँ, फेफड़ों के कैंसर से केवल 48 वर्ष की आयु में उनका असमय निधन हो गया था।
चलिए अब उनके सबसे प्रसिद्ध और क्रांतिकारी विचार पर आते हैं, स्पीच एक्ट थ्योरी यानी वाक क्रिया सिद्धांत।
हाँ, ये ऑस्टिन का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। मूल विचार ये है कि जब हम बोलते हैं तो हम सिर्फ कुछ कह नहीं रहे होते, हम कुछ कर रहे होते हैं।
एक्शन।
हाँ, एक्शन, बोलना खुद एक क्रिया है। उन्होंने इसके 3 स्तर बताए।
3 स्तर।
हाँ, पहला लोक्यूशनरी एक्ट, ये है शब्दों का उच्चारण करना, एक व्याकरणिक रूप से सही वाक्य बोलना, जैसे दरवाजा बंद कर दो।
ठीक है।
दूसरा है इलोक्यूशनरी एक्ट, यह है बोलने में जो काम किया जा रहा है। तो दरवाजा बंद कर दो कहने में आप असल में आदेश दे रहे हैं।
अच्छा,
ये स्पीच एक्ट थ्योरी का समझिए दिल है। वादा करना, चेतावनी देना, माफी मांगना, शर्त लगाना, नाम रखना, ये सब इलोक्यूशनरी एक्ट हैं।
और तीसरा?
तीसरा है परलोक्यूशनरी एक्ट, ये वो प्रभाव है जो आप बोलने के द्वारा हासिल करना चाहते हैं, जैसे आदेश देकर किसी से दरवाजा बंद करवाना,
या चेतावनी देकर किसी को डराना।
हाँ, या माफी मांगकर किसी को गुस्सा शांत करना, ये सब परलोक्यूशनरी एक्ट्स हैं।
अच्छा, अगर मैं कहूँ मैं वादा करती हूँ कि कल तुम्हारी मदद करूंगी, तो इसमें ये 3 स्तर कैसे काम करेंगे?
बहुत अच्छा उदाहरण। यहाँ लोक्यूशनरी एक्ट है इन शब्दों को सही ढंग से बोलना, इलोक्यूशनरी एक्ट है वादा करना, ये असल काम है जो आप कर रहे हैं, और परलोक्यूशनरी एक्ट हो सकता है सामने वाले को आश्वस्त करना, ये शायद उस पर एक नैतिक दायित्व डालना।
समझ गए। ऑस्टिन का मुख्य फोकस इलोक्यूशनरी एक्ट पर था, ये दिखाना कि मैं वादा करता हूँ कहना सिर्फ वादा करने के इरादे का बयान नहीं है, ये खुद वादा करने का कार्य है, एक्शन है।
और यहीं पर पारंपरिक दर्शन से अलगाव आता है ना, क्योंकि पारंपरिक रूप से तो कथनों को सच या झूठ के पैमाने पर परखा जाता था।
बिल्कुल, लेकिन मैं वादा करती हूँ या नमस्ते या माफी मांगती हूँ, ये सच या झूठ तो नहीं होते, तो फिर इन्हें कैसे परखा जाए?
यही ऑस्टिन का क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने कहा कि ऐसे कथनों का जिन्हें उन्होंने शुरू में परफॉर्मेटिव कहा, उनका मूल्यांकन सच झूठ से नहीं बल्कि उचित अनुचित या सफल असफल के पैमाने पर होना चाहिए।
सफल या असफल?
हाँ, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, और इसके लिए उन्होंने फेलिसिटी कंडीशंस यानी उपयुक्तता की शर्तों का विचार दिया।
ये उपयुक्तता की शर्तें क्या हैं? कोई उदाहरण देकर समझा सकते हैं?
हाँ, देखिए, ये वो सामाजिक और प्रासंगिक शर्तें हैं जिनका पूरा होना जरूरी है ताकि कोई वाक क्रिया, कोई स्पीच एक्ट कामयाब हो सके।
अच्छा।
जैसे वादा करने के लिए कुछ शर्तें हैं कि बोलने वाला सचमुच वादा करने का इरादा रखता हो, वो उस वादे को पूरा करने की स्थिति में हो, और वादा भविष्य के किसी काम के बारे में हो। इसी तरह शादी की रस्म में कोई कहे मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूँ, तो ये कहने के लिए बोलने वाले का अधिकृत होना जरूरी है।
सही बात है।
अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती तो वाक क्रिया असफल हो जाती है, इनफिलिसिटस, भले ही शब्द सही बोले गए हों। जैसे कोई बच्चा कहे मैं तुम्हें 10 साल जेल की सजा सुनाता हूँ, तो ये कथन सफल नहीं है क्योंकि उसके पास वो अधिकार नहीं है।
तो ये समझना कि भाषा सिर्फ वर्णन नहीं करती बल्कि सामाजिक कार्य करती है और उसकी सफलता सामाजिक नियमों और संदर्भ पर निर्भर करती है, यही स्पीच एक्ट थ्योरी का सार है।
बिल्कुल, इसने भाषा के दर्शन का दायरा बहुत बहुत बड़ा कर दिया। अब भाषा सिर्फ ज्ञान मीमांसा का विषय नहीं रही बल्कि सामाजिक क्रिया, नैतिकता और व्यवहार का भी अध्ययन बन गई, और इसने तार्किक प्रत्यक्षवादियों को भी सीधी चुनौती दी।
हाँ, क्योंकि उनके अर्थहीन माने जाने वाले कई कथन,
हाँ, जैसे नैतिकता या शिष्टाचार के कथन, वो असल में महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करते पाए गए।
ऑस्टिन की दूसरी महत्वपूर्ण किताब सेंस एंड सेंसिबिलिया का जिक्र आता है, उसमें उन्होंने क्या तर्क दिया था?
इस किताब में ऑस्टिन ने इंद्रिय अनुभव या जिसे परसेप्शन कहते हैं, उसके पारंपरिक सिद्धांतों, खासकर सेंस डेटा सिद्धांत की, आप कह सकते हैं, धज्जियां उड़ाईं।
अच्छा,
सेंस डेटा सिद्धांत कहता है कि हम सीधे बाहरी वस्तुओं को नहीं जानते, बल्कि अपने मन में बनी उनकी संवेदी छवियों जैसे रंग, आकार, इनको जानते हैं। ऑस्टिन ने अपनी वही सामान्य भाषा वाली पद्धति का इस्तेमाल किया और दिखाया कि वास्तविक लगता है, दिखता है, जैसे शब्दों का हम रोजमर्रा में जैसा प्रयोग करते हैं, वो दार्शनिकों की बनाई इस कृत्रिम तस्वीर से बिल्कुल अलग है और कहीं ज्यादा जटिल है।
तो उनका तर्क था कि दार्शनिकों ने इन सामान्य शब्दों का गलत इस्तेमाल करके ये समस्याएं खड़ी की।
बिल्कुल, ये उनकी पद्धति का एक बेहतरीन उदाहरण है, सामान्य शब्दों के इस्तेमाल की बारीकी से जांच करके दार्शनिक उलझनों को सुलझाना। उनकी किताब फिलोसॉफिकल पेपर्स में भी शायद यही तरीका दिखता है।
हाँ, उसमें भी कई महत्वपूर्ण निबंध है।
हाँ, खासकर उनके निबंध अ प्ली फॉर एक्सक्यूजेस में, यानी बहानों के लिए एक याचिका। यहां वो दिखाते हैं कि जब हम कोई गलती करते हैं तो गलती से हो गया कहने और अनजाने में हो गया कहने में क्या फर्क है।
अच्छा, क्या फर्क है?
उनका विश्लेषण बताता है कि गलती से करने का मतलब अक्सर होता है कि इरादा गलत था पर काम सही किया, जैसे गलत नंबर डायल कर दिया, जबकि अनजाने में करने का मतलब होता है कि इरादा सही था पर काम बिगड़ गया, जैसे सही नंबर मिलाते हुए हाथ फिसल गया।
अरे वाह, ये तो बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण है। लगता है कि ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, इरादा और मानवीय कार्यवाही को समझने का एक गहरा तरीका है।
बिल्कुल, यही ऑस्टिन की खूबी थी। रोजमर्रा की भाषा के इन भेदों से वे मानवीय अनुभव और नैतिक निर्णयों की जटिलताओं को उजागर करते थे, और इस तरह के विश्लेषण का असर दर्शन और कानून दोनों पर पड़ा।
ऑस्टिन और विट्गेंस्टाइन दोनों ही सामान्य भाषा पर जोर देते थे। इनमें मुख्य अंतर क्या था अगर हम देखें तो?
देखिए, समानताएं तो थीं, लेकिन ऑस्टिन का तरीका ज्यादा व्यवस्थित था, ज्यादा वर्गीकरण करने वाला, जैसे कोई वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार की वाक्य क्रियाओं की सूची बना रहा हो।
अच्छा,
विट्गेंस्टाइन का दृष्टिकोण ज्यादा, कह सकते हैं, चिकित्सीय था। वे भाषा की उलझनों को सुलझाने की बजाय उन्हें दिखाने पर ज्यादा जोर देते थे ताकि वो अपने आप खत्म हो जाए। साथ ही ऑस्टिन प्राकृतिक भाषा की बारीकियों पर ज्यादा केंद्रित थे, जबकि विट्गेंस्टाइन भाषा खेलों की विविधता पर ज्यादा ध्यान देते थे।
और ऑस्टिन की विरासत, उनके जाने के बाद उनके विचारों का क्या हुआ? कितना असर रहा?
उनकी विरासत बहुत व्यापक है। जैसा हमने पहले कहा, उन्होंने भाषा के दर्शन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने भाषा विज्ञान की एक पूरी नई शाखा प्रैग्मैटिक्स की नींव रखी।
प्रैग्मैटिक्स?
हाँ, जो इस बात का अध्ययन करती है कि संदर्भ में भाषा का उपयोग कैसे अर्थ पैदा करता है।
उनके छात्र जॉन सर्ल ने भी उनके काम को आगे बढ़ाया था ना?
हाँ, जॉन सर्ल ने स्पीच एक्ट थ्योरी को और विकसित किया, उसे और व्यवस्थित किया। इसके अलावा जर्मन दार्शनिक युर्गन हेबरमास ने अपने प्रसिद्ध संवादी क्रिया के सिद्धांत में ऑस्टिन के विचारों का प्रमुखता से इस्तेमाल किया।
अच्छा,
ये दिखाने के लिए कि कैसे भाषा सामाजिक समन्वय और समझ बनाने का आधार है।
और क्या दर्शन के बाहर भी इसका प्रभाव रहा, जैसे साहित्य या कानून में?
निश्चित रूप से, साहित्य सिद्धांत में जैक्स डेरिडा और जूडिथ बटलर जैसे विचारकों ने परफॉर्मेटिविटी की अवधारणा को अपनाया, हालांकि उन्होंने ऑस्टिन की आलोचना भी की।
हाँ, डेरिडा के साथ बहस का जिक्र था।
हाँ, उन्होंने इस विचार का विस्तार लिंग, पहचान और शक्ति संबंधों के विश्लेषण में किया। डेरिडा के साथ ऑस्टिन के विचारों पर एक प्रसिद्ध बहस भी हुई थी। कानून में कॉन्ट्रैक्ट्स और गवाही के विश्लेषण में स्पीच एक्ट्स आज भी प्रासंगिक हैं।
और कंप्यूटर विज्ञान में भी?
हाँ, कंप्यूटर विज्ञान में AI के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिजाइन करने में उनके विचारों से मदद मिलती है। नैतिकता में वादे करने जैसी क्रियाओं की प्रकृति को समझने में उनका योगदान है।
ये जानना भी रोचक है कि परफॉर्मेटिव शब्द आजकल आम बोलचाल में भी इस्तेमाल होता है, पर शायद कुछ अलग मतलब से।
हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। अक्सर आम भाषा में परफॉर्मेटिव का मतलब होता है दिखावटी या सिर्फ प्रदर्शन के लिए किया गया।
हाँ, जैसे परफॉर्मेटिव एक्टिविज्म।
बिल्कुल, ये ऑस्टिन के तकनीकी अर्थ से काफी अलग है, जहां परफॉर्मेटिव का मतलब था वो कथन जो खुद एक क्रिया को अंजाम देता है। ये फर्क ध्यान में रखना जरूरी है।
क्या हम उनके कुछ प्रमुख कथनों को याद कर सकते हैं जो उनके विचारों का सार प्रस्तुत करते हो?
जरूर, अपनी पद्धति के बचाव में वे अ प्ली फॉर एक्सक्यूजेस में लिखते हैं बहुत खूबसूरती से, हमारे शब्दों का सामान्य भंडार उन सभी भेदों को समाहित करता है जिन्हें मनुष्यों ने कई पीढ़ियों के जीवन काल में खींचने लायक पाया है। ये निश्चित रूप से अधिक नॉमरूस, अधिक सॉलिड होने की संभावना है किसी भी उस चीज से जिसे आप या मैं अपनी आराम कुर्सी में एक दोपहर में सोच सकते हैं।
ये सामान्य भाषा के प्रति उनके गहरे सम्मान को दिखाता है।
और स्पीच एक्ट्स के मूल्यांकन पर भी उनका एक महत्वपूर्ण कथन था ना?
हाँ, कि सवाल ये नहीं है कि क्या ये सच है या झूठ, बल्कि क्या ये उचित है या अनुचित, क्या ये सफल है या असफल। ये दिखाता है कि कई महत्वपूर्ण कथनों के लिए सच्चाई नहीं बल्कि सामाजिक उपयोगिता ही कसौटी है।
और सामान्य भाषा की सीमा और महत्व पर उनका संतुलित नजरिया कैसा था?
उसके लिए ये कथन सटीक है। सामान्य भाषा अंतिम शब्द नहीं है। सिद्धांत के रूप में इसे हर जगह पूरक बनाया जा सकता है और सुधारा जा सकता है और बदला जा सकता है। केवल याद रखिए, यह पहला शब्द है।
पहला शब्द अंतिम नहीं।
बहुत खूब।
हाँ, वो इसे शुरुआत मानते थे, अंत नहीं।
जाहिर है इतने नए और चुनौतीपूर्ण विचारों की आलोचना भी हुई होगी।
हाँ, जरूर हुई। कुछ पारंपरिक दार्शनिकों जैसे बर्ट्रंड रसेल ने सामान्य भाषा दर्शन को थोड़ा कह सकते हैं तुच्छ कहकर खारिज करने की कोशिश की।
अच्छा, क्यों?
उनका मानना था कि ये दर्शन के बड़े सवालों जैसे वास्तविकता क्या है, इन सबसे ध्यान हटाकर सिर्फ शब्दों के खेल में उलझाता है।
और क्या आपत्तियां थीं?
एक चिंता ये भी जताई गई कि रोजमर्रा की भाषा पर अत्यधिक निर्भरता रूढ़िवादी हो सकती है, क्योंकि भाषा में पुराने पूर्वाग्रह और अवैज्ञानिक धारणाएं भी तो शामिल हो सकती हैं।
हाँ, ये बात भी सही है।
तो आलोचकों का कहना था कि दर्शन का काम सिर्फ मौजूदा भाषा का विश्लेषण करना नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर नई अवधारणाएं गढ़ना भी है।
डेरिडा के साथ बहस का भी आपने जिक्र किया था, वो किस बारे में थी?
हाँ, जैक्स डेरिडा ने ऑस्टिन की इस बात पर सवाल उठाया कि वे बोलने वाले के इरादे को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और मजाक, नाटक या उद्धरण जैसे गैर गंभीर भाषा प्रयोगों को अपने विश्लेषण से बाहर रखते हैं।
अच्छा।
डेरिडा का तर्क था कि भाषा का अर्थ हमेशा दोहराए जाने और अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल होने की संभावना से बदलता रहता है। उसे सिर्फ बोलने वाले के तात्कालिक इरादे में नहीं बांधा जा सकता। इस बहस ने परफॉर्मेटिविटी की समझ को और जटिल बनाया, खासकर साहित्य और सिद्धांत में।
पद्धति को लेकर भी सवाल उठाए गए थे।
हाँ, कुछ ने पूछा कि क्या यह तरीका पर्याप्त रूप से व्यवस्थित और कठोर है या ये सिर्फ किसी खास संस्कृति की भाषाई आदतों को ही उजागर करता है, न कि कोई सार्वभौमिक दार्शनिक सत्य। ये सवाल भी उठा कि क्या स्पीच एक्ट थ्योरी को हर तरह के भाषाई व्यवहार पर लागू करना सही है या इसका दायरा सीमित है।
इन आलोचनाओं के बावजूद ऑस्टिन का प्रभाव तो खैर साफ दिखता है। उनके जीवन से जुड़े कुछ और रोचक पहलू जो याद रखने लायक है, संक्षेप में।
हाँ, उनका द्वितीय विश्व युद्ध का वो महत्वपूर्ण खुफिया कार्य, उनकी मशहूर सैटरडे मॉर्निंग्स और भाषा के विश्लेषण में उनकी वो बेजोड़ बारीकी, जैसे जानबूझकर पर पूरा सेमेस्टर, उनका अनिच्छुक प्रकाशक होना, और उनका अरस्तु जैसे दार्शनिकों का मूल ग्रीक में गहरा अध्ययन जिसने उनकी भाषा की समझ को और पैना किया होगा, और अफसोस मात्र 48 साल की उम्र में उनका निधन, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वो और कितना कुछ दे सकते थे।
तो कुल मिलाकर जेल ऑस्टिन हमें सिखाते हैं कि भाषा सिर्फ दुनिया को दर्शाने वाला आईना नहीं है बल्कि दुनिया में काम करने वाला एक औजार है, एक टूल है।
हाँ,
रोजमर्रा की बातचीत में छुपे गहरे अर्थों को पहचानना और ये समझना कि हमारे शब्द असल में क्या करते हैं, यही उनकी मुख्य देन है।
बिल्कुल, उन्होंने हमें भाषा के सामाजिक और क्रियात्मक पहलू पर ध्यान देना सिखाया। उनके काम से ये समझ मिलती है कि संवाद सिर्फ विचारों का आदान प्रदान नहीं है बल्कि ये रिश्तों, जिम्मेदारियों और हमारी सामाजिक दुनिया को गढ़ने का एक तरीका है।
और यहाँ शायद हमारे श्रोतों की विचार छोड़ सकते हम। अगर हम अपने रोज के बोलने पर थोड़ा ध्यान दें, वो वादे जो हम करते हैं, वो चेतावनियां जो हम देते हैं, वो प्रशंसा जो हम करते हैं, ये वो माफी जो हम मांगते हैं या शायद नहीं मांग पाते, ये सोचना कि ये शब्द सिर्फ ध्वनियां नहीं बल्कि कर्म है जो दुनिया पर असर डालते हैं, क्या ये हमारे आपसी व्यवहार और संवाद को कुछ बेहतर बना सकता है?
सोचने वाली बात है, जरूर।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।